मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। दोस्तों, फिलहाल हम लोग व्यस्तता नामक खतरनाक वायरस के बारे में बातें कर रहे हैं, और यदि आप सचमुच इस वायरस से परेशान हैं तो इससे मुक्ति पाने का केवल एक उपाय है, और वह उपाय है इस वायरस की पहचान कर पाना। इस रूप में नहीं कि यह वायरस किन किन रूपों में मौजूद रहता है, बल्कि इस रूप में कि मेरे अंदर यह वायरस किन रूपों में मौजूद है। जैसे ही आप इसे पहचान लेंगे, जैसे ही यह आपकी पकड़ में आ जाएगा, ये मान करके चलिए कि आपको छोड़ करके चला जाएगा, क्योंकि बात इसकी समझ में आ जाएगी। जैसे कि चोर होता है ना, तो अगर आपने चोर के चेहरे को देख लिया तो चोर समझ जाता है कि नहीं नहीं इसने तो मुझे पहचान लिया है, तो वो फटाक से आप भाग जाएगा वहां से कि भैया इसने मुझे पहचान लिया है। अब उसकी बात आप तर्क वितर्क के आधार पर कह सकते हैं कि वो तो हत्या ही करके जब मानेगा, क्योंकि उसको लग गया है कि साहब इसने तो मुझे पहचान लिया है, तो ये तो सीधे मुझे जेल भिजवा देगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक सामान्य सिद्धांत की बात कर रहा हूं कि जैसे इस वायरस को ये लगेगा कि नहीं मैं तो पकड़ा गया हूं, वैसे ही वह आपको छोड़कर भाग जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि इसके सिवाय कोई दूसरा उपाय है। हाँ, एक उपाय है एक जबरदस्त किस्म के अनुशासन का, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि वह अनुशासन बहुत लंबे समय तक काम नहीं करता है। कुछ ही समय के बाद वह अनुशासन की जो कड़ाई होती है, उसकी जो कठोरता होती है, उसके जो बंधन होते हैं, उनसे आप बहुत कसमकश महसूस करने लगते हैं, छुटकारा पाने के लिए कोशिशें करने लगते हैं, और फिर से वही बहानेबाजी दिमाग में आने लगती है, अरे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अरे नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, और कर ही लेंगे तो ऐसा कौन सा तोप चल जाएगा। इस तरह की बातें दिमाग में आने लगेंगी और फिर से उसी पुराने ढर्रे पर हम आ जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम इसे थोड़ा सा समझ लें और उससे मुक्ति पा लें। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने आप सबको काफ़ी कुछ होमवर्क दिए थे, और मुझे नहीं मालूम कि आप अपनी व्यस्तताओं में से इसके लिए कितना समय निकाल पाए हैं, और यदि समय निकाल भी पाए हैं तो कितनी ईमानदारी के साथ आपने इस काम को किया है। खासकर उन लोगों ने जिन्होंने इस पर कुछ भी काम किया है। आज का यह जो मेरा लाइफ मैनेजमेंट है, विशेषकर उन्हीं को संबोधित है। देखिए, यदि मैं समय की बात करूं या व्यस्तता की बात करूं, फिलहाल आप इन दोनों को एक ही मान करके चलें, तो इसका जो स्वरूप होता है, इसका जो रूप होता है, इसका जो फॉर्म है, ये जो अगर हम इसकी तुलना किसी और वस्तु से करके समझना चाहें तो दो तरह के होते हैं। पहले को आप कह सकते हैं आयरन शीट की तरह, आयरन शीट जैसे कि एक लोहे की चद्दर है, एक लोहे की चद्दर, लोहे की परत, राइट। और इसका जो दूसरा स्वरूप होता है वह होता है स्पंज की चद्दर या स्पंज की परत। जैसे एक गद्दा होता है ना बिस्तर पर बिछाने का, उसी को समझ लीजिए कि एक लोहे का गद्दा है और एक स्पंज का गद्दा है। ये दो तरह के इसके स्वरूप होते हैं। अब आपको पहले इस बात पर विचार करना है कि जब आपने अपनी जांच पड़ताल की है तो उस जांच पड़ताल के बाद अब आपको यह जो समय का स्वरूप है या जो व्यस्तता का स्वरूप है किस तरह का अनुभव हो रहा है, किस तरह का मालूम पड़ रहा है, लोहे की चद्दर की तरह या स्पंज की चद्दर की तरह, स्पंज के परत की तरह, स्पंज के गद्दे की तरह, किस तरह का आप महसूस कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई ना कोई एक स्वरूप आपके दिमाग में मौजूद होगा। देखिए, यहां मैं जो जिन दो स्वरूपों की बात कर रहा हूं, आइए थोड़े से सरल रूप में मैं इसे आपके सामने रखूं। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये लोहे की चद्दर का है, तो इसका मतलब यह है कि आपने जब विश्लेषण किया तो विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि नहीं, मेरी जो व्यस्तता है वो बिल्कुल सही है, मेरे पास बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है दूसरे काम करने के लिए, मैं जो कहता हूं कि मैं व्यस्त हूं ये 100% सही है। ठीक इसके विपरीत कि यदि आपको लगा कि नहीं नहीं मेरे पास तो बहुत सारा समय रहता है, ये समय जो है ना ये मैं बेकार करता हूं, ये समय यहां चला जाता है, अरे ये तो मेरा खाली ही रहता है लेकिन मेरे मुंह से निकलता रहता है कि मैं व्यस्त हूं, इसका मतलब है कि समय का स्वरूप आपके अनुभव में एक स्पंज के गद्दे की तरह है या स्पंज के टुकड़े की तरह है। स्पंज की क्या विशेषता होती है? देखिए, जब आप हम ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ठीक है, इसकी जो सतह है वो बिल्कुल ठोस है, भरी हुई है, अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जब आप उसे पानी में डुबोते हैं और डुबोने के बाद निकालते हैं और निकालने के बाद जब निचोड़ते हैं तो आप देखिए कि वो अपने साथ कितने सारे जल को धारण करके बाहर निकलता है, कितने सारा जल उसमें होता है, और जब आप उसे निचोड़ते हैं तो पानी की धारा बहने लगती है और बड़े आराम से पानी की धारा निकलती है। इसका मतलब यह हुआ कि स्पंज में कहीं न कहीं तो जगह थी जहां अब यह पानी आ गया है। स्पंज का स्वरूप ही पोरस का स्वरूप होता है, जिसमें संरंध्र होते हैं, या कह लीजिए बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ऐसे छोटे छोटे छिद्र जो सामान्यतया हमें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन वो होते हैं। और जैसे उन्हें मौका मिलता है वो दूसरों को अपने में जगह दे देते हैं, जैसे कि उसने पानी को जगह दे दिया। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी बीमारी से अब परिचित हो गए हैं, बात खत्म। अब आप देखिए कि बहुत जल्दी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपको ऐसी मुक्ति मिलती है तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, तो मुझे भरोसा होगा कि नहीं, मैंने जो उपाय बताया था उसने काम किया। इसका दूसरा रूप है जो मैंने आपको लोहे के चद्दर के बारे में बताया कि आपको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि नहीं, मेरी जो व्यस्तता की बात है उसमें कहीं कोई भी खामी है। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, उसमें खामी है। तो फिर आपका प्रश्न होगा, तो फिर मुझे लग क्यों नहीं रहा है? आपको लग इसलिए नहीं रहा है क्योंकि जब आप इसका विश्लेषण कर रहे थे तो आप अपने प्रति बहुत सद्भाव रखे हुए थे, आप तटस्थ नहीं थे, आप अपने प्रति निर्मम नहीं थे, आप लगातार अपना बचाव करते हुए चल रहे थे। और फिर जब काट छांट करने की बात आई तो आपको लगा कि नहीं, मेरे लिए यह भी जरूरी है, मेरे लिए यह भी जरूरी है, मेरे लिए यह भी जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि आप 8 घंटे सोते हैं, तो नहीं, मेरे लिए तो यह जरूरी है क्योंकि जब मैं उठ जाता हूं तो उठने के बाद दिन भर मेरा खराब होता है, क्योंकि अलसाया अलसाया रहता है, तो 2 घंटे और सो लूं कम से कम दिन भर तो उसकी वजह से बच जाएगा, नहीं तो अगर मैं 1 घंटे भी इसमें कम कर देता हूं तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। तो ये कौन सी होशियारी हो गई कि 1 घंटे के चलते हम बाकी के अपने 15 घंटे बर्बाद कर दें? तो गणित की दृष्टि से तो आप बिल्कुल सही है, लेकिन विश्लेषण करने में आपने गलती ये की है कि जो 8 घंटे सोना आपकी आदत है या आवश्यकता है या अनिवार्यता है, वहां आप थोड़ा सा चूक गए। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपसे चूक हुई है, अदरवाइज आपके लिए भी समय का यह जो स्वरूप है यह स्पंज के गद्दे की तरह ही होता। फ्रेंड्स, मैं कल आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा, बिल्कुल जीवंत उदाहरण बताऊंगा कि देखिए ये लोग किस तरीके से व्यस्त रहते हुए भी किस किस तरीके से किन किन उपायों से क्या क्या काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि यह विषय आपके सामने और अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से स्पष्ट हो सके। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। नमस्कार।